नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कंपटिया सिक्योरिटी प्लस एसवाईओ 701 लास्ट मिनट क्रैम एंड्रयू रामदयाल की परीक्षा केंद्रित त्वरित पुनरावृत्ति पुस्तक है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा का आरंभिक पाठ्यक्रम पढ़ाना नहीं, बल्कि परीक्षार्थी को पहले से पढ़े हुए उद्देश्यों का संक्षिप्त व्यवस्थित स्मरण कराना है। पुस्तक जनवरी 2024 के आसपास प्रकाशित हुई और सिक्योरिटी प्लस के वर्तमान एसवाईओ 701 संस्करण के लिए बनाई गई है। इसमें प्रत्येक परीक्षा उद्देश्य को कुछ वाक्यों में समेटने की घोषित पद्धति अपनाई गई है। विषय वस्तु में मूलभूत सुरक्षा अवधारणाएं, खतरे और कमजोरियां, सुरक्षित संरचना व डिजाइन, पहचान और पहुंच प्रबंधन, जोखिम व शासन तथा क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्र आते हैं। रामदयाल का पेशेवर अनुभव और अनेक आईटी प्रमाण पत्र इस सामग्री को परीक्षा की शब्दावली से परिचित कराते हैं। फिर भी यह पुस्तक व्यापक पाठ्य पुस्तक, प्रयोगशाला अभ्यास या पूर्ण मॉक परीक्षा का विकल्प नहीं है। इसका उचित उपयोग अंतिम दिनों में ज्ञान की कमियां पहचानने, शब्दों के बीच संबंध दोहराने और विस्तृत अध्ययन सामग्री के साथ तेज रिकैप करने में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, परीक्षा उद्देश्यों को सूक्ष्म नोट्स में बदलने की पुनरावृत्ति पद्धति। इस पुस्तक की मुख्य विशेषता इसका अत्यंत संक्षिप्त प्रारूप है। यह सिक्योरिटी प्लस एसवाईओ 701 के उद्देश्यों को विस्तृत अध्यायों, लंबे उदाहरणों या गहरी तकनीकी व्युत्पत्ति के बजाय छोटे कथनों में याद दिलाने का प्रयास करती है। इस पद्धति का मूल्य परीक्षा से पहले तब उभरता है जब विद्यार्थी किसी बड़े स्टडी गाइड या वीडियो कोर्स को दोबारा पूरा नहीं कर सकता। संक्षिप्त नोट्स यह जांचने में मदद करते हैं कि कोई शब्द केवल पहचाना जा रहा है या वास्तव में समझा भी गया है। उदाहरणतः, यदि किसी नियंत्रण, हमले या पहुंच मॉडल का छोटा सार पढ़कर विद्यार्थी उसका उद्देश्य, संदर्भ और उपयुक्त उपयोग बता नहीं पाता, तो वह क्षेत्र आगे के अध्ययन के लिए चिन्हित हो जाता है। यह सक्रिय स्मरण की उपयोगी भूमिका है। साथ ही यही संक्षेप इसकी सीमा भी है। किसी अवधारणा का नाम याद होना परीक्षा के परिदृश्य में सबसे उचित नियंत्रण चुन पाने के बराबर नहीं है। इसलिए पुस्तक को अंतिम रिकैप, निजी फ्लैशकार्ड की जांच या उद्देश्य सूची के साथ क्रॉसचेक के रूप में देखना अधिक यथार्थवादी है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए कम उपयोगी होगी जिन्होंने पहले नेटवर्किंग, सुरक्षा सिद्धांत और परीक्षा डोमेनों का पर्याप्त आधार नहीं बनाया है। संक्षेप में, पुस्तक ज्ञान बनाने से अधिक उसे संगठित और पुनः सक्रिय करने का उपकरण है। दूसरा, मूलभूत सुरक्षा अवधारणाओं में भरोसा, नियंत्रण और डेटा प्लेन। पुस्तक के मूलभूत अवधारणा खंड में सुरक्षा को केवल एन्क्रिप्शन या एंटीवायरस तक सीमित नहीं माना गया है। उपलब्ध अंशों से डेटा प्लेन, इम्प्लिसिट ट्रस्ट जोन, सब्जेक्ट और सिस्टम संबंध तथा पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट जैसे शब्द शामिल होने की पुष्टि होती है। इनका महत्व आधुनिक सुरक्षा सोच में है, क्योंकि डेटा तक पहुंच किसी एक तकनीक से नहीं, पहचान, संदर्भ, नीति और लागू करने वाले बिंदु के संयुक्त निर्णय से नियंत्रित होती है। इम्प्लिसिट ट्रस्ट जोन उस जोखिम को रेखांकित करता है जिसमें नेटवर्क के भीतर होने को ही भरोसे का प्रमाण मान लिया जाता है। इसके विपरीत, स्पष्ट सत्यापन और न्यूनतम आवश्यक पहुंच की सोच अनधिकृत गतिविधि के फैलाव को घटाती है। सब्जेक्ट वह इकाई हो सकती है जो पहुंच मांगती है, जबकि सिस्टम या ऑब्जेक्ट वह संसाधन है जिस पर निर्णय लागू होना है। पॉलिसी एनफोर्समेंट पॉइंट उस जगह को दर्शाता है जहां नीति वास्तविक अनुमति या निषेध में बदलती है। परीक्षा में इन शब्दों को अलग अलग परिभाषाओं की तरह याद करना पर्याप्त नहीं होता। परीक्षार्थी को समझना चाहिए कि गलत भरोसा क्षेत्र, कमजोर नीति लागूकरण या अस्पष्ट पहचान कैसे डेटा जोखिम पैदा कर सकते हैं। पुस्तक का छोटा प्रारूप इन संबंधों को शीघ्र याद दिलाता है, पर उनके व्यावहारिक विन्यास के लिए अतिरिक्त अध्ययन आवश्यक रहेगा। तीसरा, खतरों, हमलों और कमजोरियों को नियंत्रणों से जोड़ने का ढांचा। सिक्योरिटी प्लस की तैयारी में खतरों, हमलों और कमजोरियों के बीच फर्क निर्णायक है, और यह पुस्तक इन्हें अपने व्यापक त्वरित कवरेज का हिस्सा बनाती है। खतरा किसी संभावित हानिकारक कारक या क्षमता को दर्शाता है, कमजोरी किसी ऐसी कमी को जिस पर लाभ उठाया जा सकता है, और हमला उस कमी का वास्तविक दुरुपयोग है। यह भेद जोखिम आधारित निर्णय का आधार बनता है। यदि टीम केवल हमले का नाम पहचानती है लेकिन उसकी प्रवेश स्थितियां, प्रभावित संपत्ति और रोकथाम नियंत्रण नहीं समझती, तो उत्तर अधूरा रह जाता है। उपलब्ध सामग्री में संतुलित सुरक्षा मुद्रा के लिए निरोधक, निवारक, खोजी और सुधारात्मक नियंत्रणों के मिश्रण का उल्लेख मिलता है। यह वर्गीकरण उपयोगी है क्योंकि हर नियंत्रण का कार्य एक जैसा नहीं होता। नीति या चेतावनी निरोधक हो सकती है, पहुंच प्रतिबंध निवारक, लॉग निगरानी खोजी और बैकअप या पुनर्स्थापन सुधारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। परीक्षा के परिदृश्यों में अक्सर प्रश्न यही होता है कि किसी घटना के बाद, पहले या उसके दौरान कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है। लास्ट मिनट क्रैम इन श्रेणियों को एक मानसिक मानचित्र की तरह दोहराने में मदद कर सकती है, लेकिन वास्तविक प्रश्नों में सही विकल्प चुनने के लिए हमले की श्रृंखला, परिसंपत्ति का महत्व और संचालन पर असर का विवेक चाहिए। अतः संक्षिप्त सूची को परिदृश्य आधारित प्रश्नों के साथ जोड़ना आवश्यक है। चौथा, पहचान, पहुंच प्रबंधन और सुरक्षित संरचना का संयुक्त महत्व। पुस्तक पहचान और पहुंच प्रबंधन के साथ आर्किटेक्चर और डिजाइन को भी परीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में रखती है। यह संयोजन उचित है क्योंकि उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित कर लेना अपने आप में सुरक्षा नहीं देता। पहचान के बाद यह तय करना होता है कि किस संसाधन तक, किस समय, किस विधि से और कितनी सीमा तक पहुंच दी जाए। न्यूनतम विशेषाधिकार, भूमिकाओं के अनुसार अनुमति, बहुकारक सत्यापन और पहुंच नीतियां इसी व्यापक समस्या के अलग पहलू हैं। सुरक्षित संरचना का प्रश्न यह देखता है कि ये निर्णय नेटवर्क, अनुप्रयोग, डेटा और प्रशासनिक सीमाओं में कैसे लागू होंगे। उदाहरण के लिए, भरोसे की सीमाएं स्पष्ट न हो या नीति लागू करने वाला बिंदु गलत स्थान पर हो, तो सही प्रमाणित उपयोगकर्ता भी अपेक्षा से अधिक संसाधनों तक पहुंच सकता है। इसी कारण पहचान प्रबंधन को केवल पासवर्ड विषय मानना भ्रामक है। संक्षिप्त पुनरावृत्ति में मुख्य शब्दों को जोड़कर देखना उपयोगी है। जैसे प्रमाणीकरण पहचान का प्रमाण है, प्राधिकरण अनुमति का निर्णय है और लेखा परीक्षण गतिविधि का रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। पुस्तक की उपयोगिता इन्हीं भेदों को जल्दी ताजा करने में है। सीमा यह है कि इसमें पहचान प्रणाली के विस्तृत कॉन्फ़िगरेशन या जटिल डिजाइन समझौते पढ़ाने की जगह कम है। अभ्यर्थियों को अभ्यास प्रश्नों में यह जांचना चाहिए कि वे किसी परिस्थिति के लिए उपयुक्त पहुंच नियंत्रण चुन पा रहे हैं या नहीं। अंत में, जोखिम, शासन और क्रिप्टोग्राफी को परीक्षा उत्तरों में लागू करना। पुस्तक जोखिम प्रबंधन, शासन और क्रिप्टोग्राफी को भी अपने संक्षिप्त दायरे में शामिल करती है। ये क्षेत्र अलग दिखते हैं पर व्यवहार में परस्पर जुड़े हैं। जोखिम प्रबंधन किसी संपत्ति के मूल्य, संभावित खतरे, मौजूद कमजोरियों और प्रभाव को देखकर प्राथमिकता तय करता है। शासन उस प्राथमिकता को नीतियों, जिम्मेदारियों और स्वीकार्य व्यवहार में बदलता है। क्रिप्टोग्राफी डेटा की गोपनीयता, अखंडता या पहचान विश्वास जैसी आवश्यकताओं को तकनीकी साधनों से समर्थित करती है। केवल किसी एल्गोरिदम या कुंजी शब्द को याद कर लेना पर्याप्त नहीं, क्योंकि प्रश्न अक्सर उद्देश्य पूछते हैं। उदाहरणतः, डेटा को पढ़ने से बचाना गोपनीयता का प्रश्न है, परिवर्तन पकड़ना अखंडता का, और किसी पक्ष की पहचान या संदेश की विश्वसनीयता सिद्ध करना अलग आवश्यकता है। इसी तरह जोखिम को समाप्त करना हर बार संभव या आर्थिक रूप से उचित नहीं होता। संगठन जोखिम को कम कर सकता है, साझा कर सकता है, स्वीकार कर सकता है या गतिविधि से बच सकता है। एक क्रैम गाइड का लाभ यह है कि वह इन विकल्पों और शब्दों को तेजी से सामने रख देती है, जिससे परीक्षार्थी भ्रमित अवधारणाओं को अलग कर सके। पर शासन संबंधी निर्णय और क्रिप्टोग्राफिक उपयोग संदर्भ पर निर्भर होते हैं, इसलिए इस पुस्तक के बाद प्रश्नों में यह अभ्यास जरूरी है कि किसी नियंत्रण को उसकी तकनीकी विशेषता नहीं, बल्कि जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्य के आधार पर चुना जाए। निष्कर्ष में, कंपस सिक्योरिटी प्लस SYO 701 लास्ट मिनट क्रैम उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्होंने पहले ही कोई विस्तृत स्टडी गाइड, प्रशिक्षण कोर्स, नोट्स या प्रयोगात्मक अभ्यास पूरा कर लिया है और अब परीक्षा उद्देश्यों को तेजी से दोहराना चाहते हैं। यह विशेष रूप से अंतिम सप्ताह में उपयोगी हो सकती है, जब लक्ष्य नया विषय सीखना नहीं बल्कि शब्दावली, नियंत्रणों के वर्गीकरण, पहुंच संबंधी भेदों, जोखिम विकल्पों और क्रिप्टोग्राफी के उद्देश्यों को सक्रिय स्मृति में लाना हो। लेखक का IT और प्रमाणन अनुभव पुस्तक को परीक्षा केंद्रित भाषा देता है, जबकि इसका संक्षिप्त स्वरूप समय बचाता है। यही विशेषता इसे बड़े ऑल इन वन गाइडों से अलग करती है। वे गाइड गहराई, उदाहरण, अभ्यास और संदर्भ देते हैं, जबकि यह पुस्तक उनका छोटा पुनरावृत्ति साथी बनने का प्रयास करती है। फिर भी इसे अकेले पढ़कर सफल होने की अपेक्षा व्यावहारिक नहीं है। SYO 701 में परिदृश्य आधारित तर्क और परफॉर्मेंस आधारित प्रश्नों की तैयारी भी चाहिए, जिसके लिए प्रयोगशाला कार्य, लॉग या कॉन्फ़िगरेशन से परिचय और समयबद्ध अभ्यास प्रश्न उपयोगी हैं। जिन पाठकों की बुनियाद कमजोर है, उन्हें पहले विस्तृत स्रोत से अवधारणाएं समझनी चाहिए। जिनकी बुनियाद बनी हुई है, वे इस पुस्तक से अपनी कमियां जल्दी खोज सकते हैं, अंतिम रिकैप को व्यवस्थित कर सकते हैं और परीक्षा से पहले अत्यधिक सामग्री के दबाव को कम कर सकते हैं। इसकी वास्तविक शक्ति विस्तार में नहीं बल्कि स्पष्ट और त्वरित संक्षेप में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एंड्रू रामदयाल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।